विरोधिता बंध जने सुनित्यम। नरक से आए हुए व्यक्ति का एक लक्षण है, पहला कि उसका अपने ही लोगों से विरोध होता है। जो इस संसार में अपने आदमी है जिन्होंने जन्म दिया, पाला, पोसा, भाई है, बंधु, उन्हीं लोगों से विरोध रहता है। अब जिस व्यक्ति का विरोध अपनी माँ से हो या पिता से हो, भाई से हो, तो समझना चाहिए कि ये नरक में रह करके आया है, इसका स्वभाव बदला नहीं और फिर नरक में जाएगा। जब यही स्वभाव रह गया तो आजकल के लड़के कभी कभी उद्विग्न होकर के कहते हैं माता पिता से, तुम हमारे लिए क्या किए हो। उसे पूछा जाए कि तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है ये पहले बताओ, लिस्ट दो कि तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। एक ही काम तो नहीं किया कि तुमको जूता से पीटा नहीं, एक ही काम नहीं किया है ना। माता पिता क्या नहीं करते हैं अपने संतान के लिए। हमने अपने घर में देखा है कि बच्चा पेशाब कर देता है जाड़ा के दिन में बिछौना पर, तो माँ उसको उठा करके सूखा पर सुलाती है और उसके मुंह से भींगे हुए बिछौने पर सो जाती है जाड़ा के दिन में। ये माँ का प्रेम है, इस तरह से बच्चों को पाली पोसी, गर्भ में धारण की, खिलाई पिलाई, नहलाई, पढ़ाई लिखाई, और सयाना हो जाने के बाद कहता है कि हमारे लिए क्या किया। तो इस तरह से जो माता पिता के किए गए उपकार को भूल सकता है वह निश्चित ही नरक से लौटता है, ये शास्त्र कह रहा है। इसी तरह से जो अपने बड़े भाई के उपकार को भूल जाए वो अभी नरक से लौटता है। हमने देखा है, एक दिन की बात है, तो भागवत में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं। एक दिन एक स्त्री हमारे पास आकर के रोने लगी हमारे गांव में, और उसका देवर उसको एक तमाचा मार दिया था उस दिन। तो वो उसका जो देवर था वो मेरा शिष्य था, तो इसलिए वो बेचारी शिकायत लाई थी। था और कई बार शौच होने के बाद मैं इसका अंग धोई हूँ, इसको मैं खिलाई हूँ, खिलाई हूँ, पिलाई हूँ, आज देखी हमको तमाचा मारा। तो मतलब वो ऐसे करुण स्वर से कह रहे थे कि जो कार्य माँ का है वो पहले की थी। होता है ना, छोटा भाई छोटा है, बड़ा भाई का विवाह हो जाता है, स्त्री आती है तो बच्चे की तरह उसकी सेवा करती है, और वही जब देर बड़ा हो जाता है तो भाई का तमाचा चला, ये तो उचित है नहीं। उसको तमाचा चलाने में अपनी माँ को मारने के समान हो गया। तो कुछ ऐसे संबंध है संसार में जिन्हें बंधु कहते हैं, जिनके साथ बंधन है, संबंध है। जिस व्यक्ति का अपने बंधुओं से ही विरोध होता है वो नरक से आया हुआ शास्त्र कहता है। विरोध हो कभी लेकिन अपने बंधुओं से विरोध नहीं होना चाहिए, खास करके भाई से और माता पिता से। विरोध होता बंध जने सुनित, व्यक्ति व दोस्ता कटुता चुबानी, सरोगता। और जो हमेशा रोगी रहे, कोई न कोई रोग हमेशा रहा, हमेशा कोई टैबलेट खाता रहे खाता रहे, तो समझे कि वो भी नरक से आया। तो मनुष्य को दवा खाना चाहिए लेकिन रोज भोजन की तरह दवा ही खाया करे, ये ठीक नहीं है। ये बुढ़ापा आदि के लिए अपवाद है, मतलब युवावस्था में मैं कह रहा हूँ कि दवा ही खाना पड़े हमेशा। तो इसका अर्थ है कि वो आदमी नरक से लौटता है, पापों के कारण रोग होता है। कई तरह लोग आजकल का तो समय है कि दवा खाने में भी गर्व करते हैं, प्राउड होते हैं कि मैं इतना दवा खा रहा हूँ। मैं एक बार झगड़ा सुना दो आदमी में, एक धनी आदमी था तो गरीब आदमी को कहता है तुम हमारे साथ क्या बात करोगे, साल भर तुम्हारे परिवार का जितना खर्च होता है भोजन आदमी उतना मेरे दवा में खर्च होता है। कौन बहादुरी हो, इसका मतलब कि तुम बहुत भारी रोगी हो। ऐसे खुलम खुला बात कर रहा। सरोगता और कटुका चबाए, जिसकी वाणी बहुत कटुक हो, दुख देने वाली हो दूसरे को, तो वो भी नरक से आया हुआ है। ये हम लोगों का जीवन है, इस समय जो जन्म लिए हैं तो बहुत थोड़े काल के लिए इस शरीर में है, इसके पहले पता नहीं कितने कितने शरीर में रह चुके और आगे पता नहीं कितने कितने शरीर में रहना होगा। तो प्रत्येक मनुष्य का अपना जो भूत भविष्य है वो वर्तमान से पता लग जाता है। यदि वर्तमान में भगवान कृष्ण में प्रीति है, उनके नाम में रुचि है, भक्तों से प्रेम है, तो निश्चित हो व्यक्ति वैकुंठ जाएगा, ये स्वाभाविक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन भगवान के मंदिर से प्रेम ना हो या भगवान के भक्तों से प्रेम ना हो, गलत समाज से, जुआरी से, चोर से मित्रता है, तो फिर उनकी जो गति होगी उसी गति में व्यक्ति जाएगा, इसे समझ लेना चाहिए। तो नाग पत्नियां यहाँ कह रही हैं कि यदि हमारा पति पहले का भक्त रहा होता, सदाचारी रहा होता, तो इस समय भी इसमें संस्कार रहा होता। इसलिए हम सहज अनुमान करती हैं कि केवल आपकी कृपा कारण है इसको अपना बनाने में, इसका स्वीकृत कारण नहीं। तो नहीं तो स्वीकृत से तो आपका चरण कमल मिल नहीं रहा, लक्ष्मी जी से बढ़कर के कौन स्वीकृत करेगा। जो सारे जगत को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष से सभी जीव खा रहे हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, देवता मनुष्य, सबको उनकी कृपा से भोग मिल रहा है। इस सबको भोजन देने वाले लक्ष्मी जी स्वयं भोगों का त्याग करके तप कर रही, आपके चरण को पाने के लिए, आपको पाने के लिए तो लक्ष्मी जी तप कर रही है, वो चरण मिला ही नहीं, इसको मिल गया, इसने तो कुछ किया नहीं। तो इसलिए सब मिला करके हम यही जानते हैं कि प्रभु आप कृपा में है, कृपा से हमारे पति को अपना बनाए, आपके चरण रेणु की कितनी महिमा है, आपके सेवा की कितनी महिमा है कि आपके चरण शरण में रहने वाले भक्त आपके चरण रज को छोड़कर न स्वर्ग चाहते हैं, न सार्वभौम संपूर्ण भूमि का पति बनना चाहते हैं, न ब्रह्मा का पद लेना चाहते हैं, न रसातल की संपत्ति चाहते हैं, न योग की सिद्धियां चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं। भगवान के चरण सेवा में इतना रस है दास बनने में, उसको छोड़कर के कुछ नहीं चाहते हैं। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वांछन जत पादर प्रपन्नः। न नाकपृष्ठम, नाकपृष्ठम न वांछन्ति, सार्वभौमं न वांछन्ति, पारमेष्ठम न वांछन्ति, रसाधिपत्यम न वांछन्ति, जत पादरजः प्रपन्नः। आपके चरण रज की शरण में रहने वाले भक्त नाकपृष्ठ की इच्छा नहीं करते, नाक पृष्ठ स्वर्ग को कहते, स्वर्ग का नाम है नाक, न माने नहीं, अ माने नहीं, क माने सुख, नाक शब्द की विशेषता है, क का अर्थ होता है सुख और न माने नहीं, नहीं सुख मतलब दुख, हाँ नहीं सुख है, तो न न दो बार होकर के काट दिया, मतलब सुख स्वर्ग क माने सुख, अ माने नहीं और न माने नहीं। जहाँ दुख नहीं है, जहाँ अ क नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, सुख का अभाव जहाँ नहीं है, केवल सुख ही सुख भरा पड़ा, उसको स्वर्ग कहते, नाक कहते। स्वर्ग का विशाल सुख है, गीता में भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशाल, विशाल सुख है, समय की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से, क्वांटिटी की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से, भोगने का जो उत्साह है सबको दे रहा हूं, उस सब दृष्टि से स्वर्ग का सुख विशाल है। इस पृथ्वी का भी सुख है कुछ, लेकिन विशाल नहीं, थोड़े समय में ही बुढ़ापा दबोच देती है, आदमी को मरना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है समय। और जब भोग भविष्य में भी अनेक शरीर में रोग होते हैं, उपद्रव होते हैं, आदमी भोग नहीं पाता। इसलिए यहाँ का जो सुख है वह अति तुच्छ है, स्वर्ग का सुख विशाल है, तो इसलिए उसको नाक कहते हैं। तो पृष्ठ माने श्रेष्ठ, स्वर्ग में भी जो श्रेष्ठ है इंद्रादि का पद, इसका अर्थ ये भक्त है जो अनन्य कृष्ण के भक्त हैं, स्वर्ग भी नहीं चाहते, न वांछन्ति, उनके मन में इच्छा ही नहीं होती। भगवान की सेवा में इतना सुख होता है कि उस सेवा सुख को छोड़ करके वे कभी भी स्वर्ग नहीं चाहते। और न तो सार्वभौम और न तो सर्व भूमि का राजा बनना चाहते। इसका अर्थ है स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो फिर सार्वभौम क्या चाहेंगे, ऐसे इसका अर्थ लेना पड़ेगा। जब स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो इस पृथ्वी का राजा क्या बनना चाहेंगे। न पारनिष्ठ, जब ब्रह्मा का पद नहीं चाहते हैं तो फिर रसातल की संपत्ति किस गिनती की है उनकी दृष्टि में, कि रसातल में बहुत ज्यादा धन है, स्वर्ग से भी ज्यादा धन है, लेकिन वो भी नहीं चाहते। न योग सिद्धि, योग की आठ प्रकार की सिद्धियां भी नहीं चाहते, अणिमा लघुमा महिमा कामावसायिक आदि सिद्धियां, और अपुनर्भवंगा, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना, मुक्ति भी नहीं चाहते। चाहते हैं केवल आपके चरण रज की सेवा, और वह चरण रज अपने आप इसको मिल गया। चरण रज, एक रज भी दुर्लभ है, ये तो बता दिया। रज क्या, साक्षात आपका चरण पाया, चरण चिन्ह पा गया सिर पर। हमारा पति बहुत भाग्यशाली है, अहो आपका कृपा वैभव कितना महान है। इस तरह से भक्ति की पहचान है, जो भक्त जितना ही महान होता है उतना ही वो भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की कामना नहीं करता है। आज के युग में तो फैशन हो गया है, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। हमारे साथ बॉम्बे में एक भक्त था, अभी इसी बार की बात है, मैं आ रहा था तो हमको अपने पासपोर्ट का फोटो कॉपी दिया और कहा कि महाराज कहीं किसी से स्पॉन्सर करा दीजिएगा हमको अमेरिका आने के लिए। और वो व्यक्ति ऐसे बातचीत हो रही थी तो कहता है हम बैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं, हम वो लोग जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा अभी तो तुम अमेरिका जाने के लिए स्पॉन्सर कराना चाहते हो, उस नरक में जाने के लिए हमसे तुम इसलिए पासपोर्ट की कॉपी दिए, और कहते हो बैकुंठ नहीं जाना चाहते। तुमको ज्ञान है बैकुंठ क्या चीज है, मूर्ख कहीं तो कुछ समझ करके बोला था। बैकुंठ नहीं जाना चाहते और अमेरिका जाना चाहते हो, तो अज्ञान बस आदमी इस तरह से बोला करता है, समझता नहीं है कुछ, ये पागल का प्रलाप होता है। चल बहुत लोग हैं जो गोलोक जाना चाहते हैं, बैकुंठ नहीं लेकिन थोड़े थोड़े स्थान के लिए बहुत भारी उनके मन में राग द्वेष होता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। भगवान से हृदय में बैठे हैं, सब जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या वांछन्ति। जो वास्तव में अपने स्वरूप को समझ जाता है, ब्रह्मभूत होता है, न सोचती न कांक्षती, न कांक्षती, किसी चीज की इच्छा नहीं करता है। स्वर्ग नहीं चाहता है तो इस पृथ्वी पर अमेरिका और जापान इंग्लैंड क्या चाहेगा, सोचने की बात है। जो स्वर्ग की उसकी इच्छा नहीं होती तो इस पृथ्वी पर कौन सा सुख रखा हुआ है, वो चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, कुछ भी, क्या यहाँ है, क्या जीव को सुख मिलेगा। इसीलिए कहते हैं न नाकतुष्टं न च सार्वभौम, स्वर्ग नहीं चाहते हैं तो फिर पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट पद क्या चाहिए। और सार्वभौम का सर्व भूमि से सार्वभौम शब्द बना, सर्व भूमि का आधिपत्य नहीं चाहते। जब यह कहा जाए कि तुम कृष्ण की सेवा छोड़ो, कृष्ण की भक्ति छोड़ो, तुमको संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनाया जाएगा अगर छोड़ दोगे, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, यूरोप का, अमेरिका का, एशिया का, सब जगह का छोड़ दो, कृष्ण की शरण छोड़ दो, तो भक्त का अब ये नहीं छोड़ सकते, कभी इच्छा ही नहीं आ सकती, छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं। ये आज किसी व्यक्ति को ऐसे कहा जाए कि छोड़ दो तुमको पूरी दुनिया का राजा बनाया जा रहा है, तो उसी जगह चलो 10-10 राजा इसके बाद भजन करेंगे। कम से कम चलो मालिक बनकर प्रचार कर देंगे। लेकिन जीव के हृदय में बहुत कामना होती है, काम को हृच्छा कहा गया है। श्रीमद भगवद्गीता में भागवत में हृच्छा, हृच्छा का अर्थ होता है कि हृदय में जो सोया हुआ है, पता नहीं चलता है। जब मनुष्य बच्चा रहता है तो उसके हृदय में कोई कामना नहीं दिखाई पड़ती है, न मिनिस्टर बनने की, न बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की, न धन कमाने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं होती, न स्त्री की कामना होती है, न और कुछ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अब वो बिल्कुल सनत कुमार हो गया, कोई कामना उसमें नहीं। जो ही उसकी उम्र बढ़ती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ कामनाएं विकसित होती जाती है, तो धीरे धीरे पढ़कर कॉम्पिटिशन में भाग लेता है, फिर ये करना वो करना वो करना, इस समय जवानी में उसकी सारी कामनाएं सामने आ जाती है। पर सुप्त अवस्था में रहती है, जैसे रात में मनुष्य सो जाते हैं किसी घर में, तो सोए हैं इसके बाद जगेंगे, अपना अपना काम करेंगे, तो कामनाएं ज्यों की त्यों रहती है, चाहे बचपन में हो आदमी, चाहे बुढ़ापा में हो, चाहे जवान, तो कुछ समय के लिए सुप्त रहती है, मरी भी नहीं रहती है, सुप्त रहती है। सुप्त को क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं, तो सुप्त रहती है वो, जगेंगी। इसलिए जब तक कामनाएं सुप्त रहती हैं, उसी समय भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। भक्ति कर ले जाएगी तो सोई की सोई रह जाएंगी, मर जाएंगी। कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि है। लेकिन जहां जवानी में अनेक कामनाएं उठेंगे तो उस समय भजन नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन हो जाएगा, प्रहलाद महाराज कहते हैं। इसलिए जब तक अभी आंधी आई नहीं है, उसके पहले भजन करके मन भगवान में लगा देना चाहिए। तो कामनाएं बहुत है, और जब भक्ति डेवलप होती है तो सारी कामनाएं जल जाती है, धीरे धीरे खत्म होती है, तो उस समय भक्त कोई इच्छा नहीं करता, केवल ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पर हो जाए, मतलब अपने स्वरूप में, तो उसी समय उसकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षत, समह सर्वेश भूत उसकी मद भक्ति भक्ति करा। वो तो समस्त वस्तुओं में जीव में समबुद्धि करता है, उसकी दृष्टि में किसी का महत्व नहीं होता है कि इस जगह पर जाऊं, ये लू, ये करूं, वो करूं, सब समान दिखता है। तो उस दशा में रह करके वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। तो भक्ता नाम अभिजाना तो जावन जस्म प्राप्त होता है। तो नाग पत्नी कह रहे हैं कि आपके चरणों की शरण में रहने वाला, चरण रज की शरण में रहने वाला, जतपाद रज को करना रहने वाले, बहुवचन बोल रहे हैं, कभी भी स्वर्ग नहीं चाहते, समस्त भूमि का अधिकार नहीं चाहते, न ब्रह्मा का पद चाहते हैं, न रसातल की संपत्ति चाहते हैं, न योग सिद्धि चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं। ये आपके भक्तों की दशा है। तो उस चरण रज को आपने इसको दिया, तो तदेश नाथा तो दुरात मन ने तमो जनी क्रोध वसत ही सब, उसी चरण रज को जो अन्य दुरातम ब्रह्मा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है, उस चरण रज को यह पाया, जबकि यह तमो जनी है, जनी माने योनि जाति, तामस जाति का है, क्रोध वश, क्रोध के वश में रहने वाला हमेशा सर्पराज यह आपके चरण रज को पा गया। और जहां तक सांसारिक संपत्तियों की बात है, जब इच्छता, यदि कोई व्यक्ति आपके चरण रज की इच्छा करता है, आपका सेवक बनना चाहता है, तो संसार चक्र भ्रमता शरीर समक्ष विभव, तो संसारी के या अपेक्षित संपत्ति जो वो चाहता है वो तो उसके सामने अपने आप आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है तो जो उसके लिए जरूरी संसारिक धन होता है वो अपने आप आ जाता है, इस श्लोक में बात कही जा रही है। संसार चक्र भ्रमता शरीर ना, जीव संसार चक्र में है, जन्म मरण में है, शरीर बदल रहा है, तो इस तरह से संसार चक्र में है, और कहीं कोई इसकी इच्छा हो गई कि मैं कृष्ण का भक्त बनूं, कृष्ण से प्रेम करूं, तो अपेक्षित संपत्ति जो उसकी उसके लिए है, जो आवश्यक है धन आदि, तो अपने आप उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। भगवान ऐसी कृपा करते हैं, इसे चिंता नहीं करनी पड़ती है संसार में जीने के लिए, निर्वाह के लिए अपने आप सब कुछ हो जाता है। ये भगवान के चरण रेणु की इच्छा का प्रभाव है, ऐसा देखा गया है वास्तव में। आज तक देखे सुने न भक्त भिखारी, कोई भगवान कृष्ण का भक्त है विष्णु का, तो ये नहीं देखा गया कि वो भिखारी है। योग अक्षम अंगहानी है, जो नहीं होता है भगवान उसको जुटाते हैं, और जो जुटा हुआ है उसकी रक्षा करते हैं। अपने मुख से बोल रहे हैं, ये भगवान का स्वभाव है। नाग पत्नी इस बात को कह रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के अतुल्य कृपा वैभव का साक्षात्कार करके नाग पत्नी आज भगवान को प्रणाम कर रही हैं बारंबार, उनके गुण बता बता करके कि आपने परस्पर विरुद्ध गुण हैं, समस्त विरुद्ध धर्मों के आप आश्रय हैं। तो वही कहकर प्रणाम कर रहे हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूताय भूताय पराय परमात्मने। 10 श्लोकों में भगवान का गुण गा करके प्रणाम कर रहे हैं, सब जगह नमः नमः लगा कर, सब में नमः लगाना चाहिए। भगवते तुभ्यम नमः, पुरुषाय तुभ्यम नमः, महात्मने तुभ्यम नमः, भूतावासाय तुभ्यम नमः, भूताय तुभ्यम नमः, पराय तुभ्यम नमः, परमात्मने तुभ्यम नमः। और आगे भी सब जगह इस तरह प्रणाम कर रहे थे। सबसे पहले पुरुषाय शब्द लगे गए हैं, पुरुष अंतर्जामी रूपेण वर्तमानाय तुभ्यम नमः, जो सबके शरीर में पुरियों में शयन करते हैं, रहते हैं अंतर्जामी रूप से, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम कर रहे हैं। एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं, विष्णु ऐसे हैं, जो सबके हृदय में है, सब जगह है, कण कण में है, ऐसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। मनुष्यों में तो एक रूम से दूसरे रूम में नहीं हो सकता, और शरीर में क्या होगा, है कि नहीं? शरीर में कैसे हो सकता है? कभी कभी तो ये देखा जाता है कि मनुष्य अपने शरीर की भी बात पूरा नहीं जानता है। जैसे कोई बीमार हो जाए, किसी को रोग हो जाए, तो उसी शरीर में रहता है अपना, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाकर के कहता है, डॉक्टर साहब बताइए हमको क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमको हो गया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये रोज की घटना है कि नहीं? तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कैसे हो गया, क्या खाए थे, किस समय से ऐसी दशा हो गई। वो व्यक्ति बार बार कहता है पता नहीं क्या हो गया हमको। नहीं, अपने शरीर के बारे में तो तुमको ज्ञान ही नहीं है, और दुनिया की क्या जानोगे। लेकिन वह शरीर से बाहर रहने वाला डॉक्टर केवल नब्ज पकड़कर बता देता है तुमको क्या हो गया है। वह शरीर में नहीं है, वो बाहर है, लेकिन वो बता देता है कि तुमको ये गड़बड़ी है। वो कुछ जानता है, लेकिन भगवान एक ऐसे सर्वज्ञ व्यक्ति है जो सबके शरीर में है, सब जानते हैं। भूतकाल से लेकर के भविष्य काल तक जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो चुका है, एक एक जीव के मन में किस सेकंड पर क्या तरंग उठी थी, क्या विचार उठा था, वो भगवान सब जानते हैं। और आगे कौन क्या सोचेगा, खाएगा, कब मरेगा, कब जिएगा, वो सब जानते हैं। और अनंत कोटि जीवों का जानते हैं। यह है भगवान का ज्ञान, इसीलिए उनको पुरुष कहते हैं। सब जानती है, और उस भगवान सब जानते हैं। तो नाग पत्नियां भगवान के इस गुण को व्यक्त कर रही हैं कि हम क्या कहें, आप हमारे पति के शुभ अशुभ कर्मों को जानते ही होंगे, पूर्व जन्म में क्या किया है, आगे इसकी क्या गति होगी, क्योंकि आप पुरुष हैं। अच्छा, पुरुष होते हुए भी आप महात्मा, महात्मा का अर्थ है जिसकी आत्मा, जिसका शरीर महान है। महान का अर्थ है देश और काल की सीमा से परे, अपरिच्छिन्न, इसको कहते। जैसे तकिया है तो तकिया के चारों तरफ हम नाप सकते हैं, इसको परिच्छिन्न कहेंगे। लेकिन ऐसे तकिया कल्पना कीजिए जिसका कोई और छोर ही ना हो, नापा नहीं जा सके, असीम हो, तो इसको अपरिच्छिन्न कहेंगे। तो यह वर्णन कर रहे हैं कि भगवान सबके शरीर में रहते हैं, तो इससे परिच्छिन्नता का दोष आता है, जिससे मतलब कृष्ण सीमित है, वे किसी शरीर के भीतर हो गए तो उस शरीर से छोटा हो गए। तो इसी का उत्तर जो कहना है, नहीं आप महात्मा है, मैंने व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, सबके भीतर रहते हुए भी आप किसी में नहीं है, सब आपके भीतर है, महात्मा का यह अर्थ है। पुरुष का अर्थ है भगवान सबके भीतर है, और महात्मा का अर्थ है और सब कुछ उनके भीतर है। ये कौन सा साइंस है? आजकल के लोग इसको नहीं समझ सकते। कोई ऐसा कहे कि हम इस हाल के भीतर बैठे हैं लेकिन हाल हमारे पेट में है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, या हम कार में बैठे हैं और कार हमारे भीतर अट गई, दोनों एक साथ कैसे लग सकता है? लेकिन गीता में भगवान कहते हैं मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थित न च मतस्थानी सर्वभूतेषु पश्चमे जोगमेषु। अपने मुख से ही बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के भीतर हूं, मैं फिर कहता हूं मैं किसी के भीतर नहीं, सब मेरे भीतर है, कोई मेरे भीतर नहीं है। ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान के स्पिरिचुअल शरीर में ये मैटेरियल वस्तु कैसे रह सकती है? लकड़ी पत्थर कांट कुछ ये कैसे उनके भीतर रहेगा? वो तो चिदभ्रम है, पूरा स्प्रिट है उनका शरीर, तो उनके भीतर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान कहते सब कुछ मेरे भीतर है, कुछ भी मेरे भीतर नहीं है, दोनों बात कहते हैं। और यहां पर नाग पत्नियां कह रही हैं कि सबके भीतर आप हैं और सब कुछ आपके भीतर है। ये है दिव्य साइंस, और बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रयास करके हम लोग समझ जाएंगे कि वास्तव में संभव है। ये भगवान गीता बोलते समय एक बार कहते हैं, आत्मा के स्वरूप का जो वर्णन करते हैं तो कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मन, और कैसे है मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियां जो है पराण्या, इंद्रियों को लोग पर कहते हैं, किससे? इस जड़ शरीर से। जैसे यहां मेरा पैर है, हाथ है, इसकी अपेक्षा आंख नाक कान श्रेष्ठ है कि नहीं? हम आंख से देख लेते हैं, जिह्वा से बोल लेते हैं, तो समग्र शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी परे आत्मा है। इस तरह से तो हम लोग कार के भीतर बैठते हैं, यहां बहुत लोग कार में बैठे हैं इसलिए उदाहरण समझ सकते हैं, कार में बैठे, लेकिन कार से निकल करके बाहर आप कार का जब चिंतन करते हो तो कार आपके मन के भीतर है ना? यहां से बैठे बैठे कार को देख रहे, क्या कार पार्किंग तो पूरी कार आपके हृदय में आ सकती है, पूरा विश्व आ सकता है। किसमें आटा हुआ है, किसके भीतर है? इस शरीर के भीतर नहीं है लेकिन मन के भीतर है। जब मन में भी सारा विश्व आंट सकता है तब फिर बुद्धि में तो कहना ही नहीं है, बुद्धि से परे आत्मा है और आत्मा से परे परमात्मा है, तो परमात्मा में क्यों नहीं सारा विश्व रहेगा भीतर? ये स्वाभाविक है, जब मन के भीतर ही सारा विश्व आंट सकता है तो परमात्मा के भीतर क्यों नहीं आंट सकता? लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी सत्य है कि उसके भीतर कुछ नहीं है, चिदगम है, स्पिरिचुअल, दोनों बात फैक्ट है। भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है कि सब कुछ उनके भीतर है। पहले ये करें कि आप सबके भीतर हैं, वर्तमान हैं, पुरुष हैं, लेकिन फिर भी आप महात्मा हैं, काल और देश के द्वारा आपकी कोई सीमा नहीं की जाए, सब कुछ आपके भीतर है, दोनों बात ये बिल्कुल ठीक है। कृष्ण सबके भीतर है और सब कुछ कृष्ण के भीतर है। क्यों? क्योंकि भूतावास है, क्योंकि भूतों के आप आवास हैं, सारे भूत आपके भीतर रहते हैं। यहां भूत का अर्थ पंच महाभूत, पंच महाभूत है। मैं इस तरह से कथा कहूंगा तब तो बहुत कम कथा पहुंचेगी, लेकिन सिद्धांत आ गया है इसलिए समझना आवश्यक है। भूतानाम आवास, आवास का अर्थ होता है आ माने सम्यक, वास माने वास, जहाँ कोई व्यक्ति अच्छी तरह से रहता है उसको आवास कहते हैं, सम्यक रूप से जहाँ रहता है या निवास आवास उसको कहते हैं। तो श्री कृष्ण भूतों के आवास है। भूत माने पंच महाभूत, भूत का अर्थ होता है वस्तु, और महास्टॉक महाभूत, भगवान ने पांच वस्तुएं बहुत विशाल मात्रा में बनाया है, सबसे बड़ा आकाश, उसके बाद वायु अग्नि जल और भूमि, इसको पंच महाभूत कहते हैं। और इन्हीं पंच महाभूतों के मिश्रण से समस्त प्राणियों का देह बना है, घर बना है, कार बनी है या बलवान बना है, जो कुछ भी बना है, तो बहुत बड़ा स्टॉक है, इसलिए इसको पंच महाभूत कहते हैं। तो प्रश्न होगा कि ये सब जो भूत है आकाश वायु अग्नि जल आदि ये कहाँ है? ये कृष्ण के भीतर है, कृष्ण इनके आवास हैं। जैसे हम लोग इस घर के भीतर हैं, ऐसे ही सारे पंच महाभूत कृष्ण के भीतर है। अच्छा, तदपि कुतः, ये कैसे संभव है? इसलिए कि भूत आया, श्री कृष्ण भूत है, ये भूतों के आवास हैं और स्वयं भूत हैं। यहाँ भूत का अर्थ है जो पहले से ही है, इसको भूत कहते हैं। भूत का ऐसे भी अर्थ होता है बीता हुआ समय, है ना, पास्ट टेंस। भूत यहाँ हे भूत आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। भूत का अर्थ है कि पंच महाभूतों के उत्पत्ति के पहले से ही कृष्ण है, उनके भीतर पंच महाभूत बने। एक दिन ऐसा था कि नारायण के अलावा कुछ भी नहीं था सृष्टि में, कुछ भी नहीं, ये आकाश भी नहीं था, हवा आदि का तो कहना ही नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान थे, नारायण थे, तो उनको भूत कहते हैं जो पहले से ही विद्यमान है। यह कैसे? क्योंकि वे पर है, पराया। पर का अर्थ होता है कारण, सबके कारण, पंच महाभूतों को जन्म देने वाले हैं, किंच परमात्मा में, और उनका कारण कोई नहीं है। परमात्मा का ही अर्थ होता है, परम आत्मा का अर्थ होता है जिस वस्तु को किसी पैदा नहीं किया, जो अपने आप है, उसको परम आत्मा कहते हैं। और आप हैं भगवान अचिंत, सदैश्वर्य से युक्त हैं, छह ऐश्वर्यों से युक्त हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार से इन श्लोकों का बहुत गहरा भाव है, बहुत फिलोसफिकल श्लोक है। अब कारणत्वम कारणातीतत्वम समर्थितुम आह, किस तरह से श्री कृष्ण कारण है समस्त जगत के और उनका कोई कारण नहीं है? कृष्ण का कोई कारण नहीं है, स्वतः सिद्ध वस्तु है और बाकी सबके कारण वे हैं। इसका समर्थन करने के लिए आगे का श्लोक बोल रहे हैं। ज्ञान विज्ञान निधय ब्रह्मणे अनंत सत्ये अगुणाया विकाराया नमस्ते प्राकृताय च। ज्ञान विज्ञान निधय, ज्ञानम का अर्थ ज्ञप्ति, विज्ञानम का अर्थ चित शक्ति, तयो निधय तभ्यम पूर्णाया, जब वह ज्ञान विज्ञान संपदो निधि व निधि तस्मय। श्री कृष्ण ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण है, निधि है। निधि का अर्थ निधियते अस्मित निधि, जहां कोई वस्तु रखी जाए उसको निधि कहते हैं, निधान। तो सारा ज्ञान और विज्ञान कृष्ण में भरा पड़ा है, सब कुछ उनमें है, कहीं से आया नहीं, उनका स्वरूप ही है। उस तरह जैसे सूर्य का स्वरूप है, उनमें प्रकाश है, तेज है, सूर्य में जो प्रकाश और तेज है, कोई मनुष्य लोक से नहीं भेजा जा रहा है, समय कि यहां से पेट्रोल लगातार भेजा जा रहा है, लिफ्ट से डाला जा रहा है, तब जल रहे हैं, ये ताप दे रहे हैं, स्वाभाविक तेज है। इस तरह से भगवान में सहज ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ जानकारी, और विज्ञान का अर्थ होता है अनुभव, चित शक्ति, स्पिरिचुअल शक्ति, इन दोनों को श्री कृष्ण निधि। अब इस बात की व्याख्या की आवश्यकता हो जाती है नए समाज में, भाई चित शक्ति क्या है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल क्या है, और इसको जानना क्या है। सामान्य जानकारी को ज्ञान कहते हैं और विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आजकल के लोग जिस विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अज्ञान है, इसका अर्थ है आचार्य लोग करते हैं, ये विगत ज्ञान है, ये विज्ञान है ना। जैसे मान लीजिए इस मंदिर में कोई व्यक्ति नया आए और आ करके नापने लगे मंदिर के चौड़ाई लंबाई को, उधर चौड़ाई नाप रहा है, लंबाई नाप रहा है और सब नाप रहा है, वजन नापने लगे, तौलने लगे टेबल ये सब कुर्सियां, ये कहे कि हम जान गए मंदिर का, हमको ज्ञान हो गया सब लंबाई चौड़ाई नाप लिया। लेकिन उस मूर्ख को ये पता न चले कि ये है मंदिर किसका और किस लिए बनाया गया है, तो उस ज्ञान को चलते नापने के कारण हो सकता है कोई जेल में भी चला जाए, है कि नहीं? इस ज्ञान से मुक्त नहीं होगा, सुबह कह सकता है तुम क्यों नाप रहे थे, ये वस्तु इधर उधर क्यों हटा दिए। लेकिन वो ये जान जाए कि यह मंदिर इस काम का है, प्रभुपाद जी इसके संस्थापक आचार्य है, इसमें ये नियम है वो नियम है, ऐसे है, भक्ति करने के लिए मंदिर है, प्रणाम करने के लिए है, प्रसाद खाने के, तो इसको कहा जाएगा ये विज्ञान, ये ज्ञान है वास्तव, इसको ज्ञान कहेंगे। और वह व्यक्ति उन नियमों के भी ग्रहण कर ले तो उसको विज्ञान कहा जाएगा। लेकिन आजकल के जिनको विज्ञानी कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है, यहाँ की वस्तुओं के गुण धर्म का अध्ययन करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि किसकी वस्तु है।